एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में, या ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने, कह सकते हैं, विचारों के क्षेत्र में काफी हलचल मचाई है। रिचर्ड डॉकिंस की मशहूर और हाँ थोड़ी विवादास्पद किताब द गॉड डिल्यूजन।
नमस्ते। हाँ, ये वो किताब है जो ईश्वर में विश्वास को सीधे सीधे एक भ्रम या मति भ्रम की तरह देखती है और ये विज्ञान और तर्क के नजरिए से अपना पक्ष रखती है।
बिल्कुल। डॉकिंस का जो मूल तर्क है वो ये है कि ईश्वर का अस्तित्व कोई सिर्फ आस्था का निजी मामला नहीं है।
हाँ, वो इसे एक वैज्ञानिक परिकल्पना मानते हैं, मतलब एक ऐसा दावा जिसे सबूतों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।
और उनका विश्लेषण उन्हें इसी नतीजे पर पहुंचाता है कि जो मौजूदा सबूत है वो इस परिकल्पना के पक्ष में नहीं जाते।
और देखिए, आजकल के माहौल में तो ये किताब और भी प्रासंगिक हो जाती है ना?
हाँ, जहाँ विज्ञान और धार्मिक आस्था के बीच अक्सर एक तनाव या बहस सी दिखती है।
बिल्कुल। ये किताब कई बुनियादी सवाल उठाती है, जैसे विश्वास की प्रकृति क्या है, हमारी नैतिकता का स्रोत क्या है, समाज के लिए धर्म फायदेमंद है या नुकसानदेह, इस तरह के सवाल। खास तौर पर उन लोगों के लिए ये काफी सोचने का सामान देती है जो शायद अपने विश्वासों पर सवाल कर रहे हों या दुनिया को समझने के लिए एक पूरी तरह तर्कसंगत रास्ता खोज रहे हों।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब के जो मुख्य तर्क हैं, इसके पीछे के विचार और समाज पर इसका क्या असर हुआ, उसको आसान भाषा में समझें।
हाँ, और ये साफ कर दें कि हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है।
बिल्कुल नहीं। बस जो स्रोत सामग्री में विचार पेश किए गए हैं उनका सार पूरी निष्पक्षता से सामने रखना है।
तो फिर शुरुआत लेखक से करते हैं, रिचर्ड डॉकिंस।
हाँ जरूर, ये कोई आम लेखक नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक विश्व प्रसिद्ध विकासवादी जीव विज्ञानी है, मतलब एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत प्रतिष्ठित पद पर रहे हैं, विज्ञान की सार्वजनिक समझ के प्रोफेसर। विज्ञान जगत में उनका बहुत नाम है।
और उनकी एक खासियत ये भी है, मुझे लगता है, कि वो मुश्किल वैज्ञानिक विचारों को भी ना आम लोगों के लिए समझने लायक बना देती हैं।
सही कहा, उनकी पकड़ विकासवाद यानी एवोल्यूशन पर बहुत गहरी है। उनकी जो पिछली किताबें थीं, जैसे द सेल्फिश जीन या द ब्लाइंड वॉचमेकर।
हाँ, काफी मशहूर हुई वो।
हाँ, उन्होंने उस क्षेत्र में काफी प्रभाव डाला और यही वैज्ञानिक पृष्ठभूमि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व जैसे गहरे सवाल को भी एक वैज्ञानिक की नजर से देखने में मदद करती है। वो सबूत मांगते हैं, तर्क की कसौटी पर कसते हैं।
ये बात महत्वपूर्ण है कि वो कोई पारंपरिक धर्मशास्त्री या दार्शनिक नहीं है।
नहीं, वो एक वैज्ञानिक हैं जो पूछते हैं, भाई सबूत कहाँ है।
हाँ।
और वो उस आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं जिसे न्यू एथिज्म यानी नया नास्तिकतावाद कहा जाता है।
बिल्कुल।
जो ये मानता है कि धार्मिक विश्वासों को भी आलोचनात्मक जांच के दायरे में लाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो धर्म है तो उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो फिर इस किताब पर आते हैं, द गॉड डिल्यूजन।
हाँ।
इसका निचोड़ क्या है, क्या कहेंगे
इसे? हम शायद नास्तिकता के पक्ष में एक विस्तृत घोषणा पत्र कह सकते हैं, है ना? इसके दो मुख्य उद्देश्य दिखते हैं मुझे तो।
हाँ, पहला तो यही है कि ईश्वर में विश्वास के समर्थन में जो पारंपरिक पुराने तर्क दिए जाते हैं,
हाँ,
उनका खंडन करना।
और दूसरा उद्देश्य जो शायद उतना ही अहम है, वो है विज्ञान और मानवतावाद पर आधारित एक नजरिए को एक सकारात्मक विकल्प की तरह पेश करना।
बिल्कुल। डॉकिंस सिर्फ यही नहीं कहते कि ईश्वर नहीं है, वो ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर के बिना भी एक तर्क संगत, नैतिक और एक मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण जीवन संभव है।
हाँ, और वो जो गॉड हाइपोथेसिस की बात करते हैं,
ईश्वर परिकल्पना।
हाँ, ईश्वर परिकल्पना। उनका मानना है कि जो वैज्ञानिक सबूत है वो इशारा करते हैं कि इस तरह के किसी सुपर इंटेलिजेंट ईश्वर के होने की संभावना लगभग लगभग शून्य के बराबर है।
सही। और वो विकासवाद यानी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को जीवन और ब्रह्मांड की जटिलता की व्याख्या करने के लिए ईश्वर की परिकल्पना से कहीं बेहतर मानते हैं, ज्यादा सरल, ज्यादा तार्किक समाधान।
तो ये किताब पाठक को एक तरह की बौद्धिक यात्रा पर ले जाती है।
हाँ,
ना
कह सकते हैं। ये कुछ बुनियादी सवालों से शुरू होती है, फिर धार्मिक तर्कों की परतें उधेड़ती हैं, और अंत में एक वैकल्पिक तर्क आधारित विश्व दृष्टि का एक खाका सा खींचती है।
और बीच में नैतिकता की जड़ें कहाँ हैं, धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, बच्चों पर धार्मिक परवरिश के क्या असर होते हैं, इन सब मुद्दों को भी छूती हैं।
हाँ, और डॉकिंस का एक साफ इरादा ये भी लगता है कि वो उन लोगों को आवाज दें जो शायद मन ही मन अपने धार्मिक विश्वासों पर शक करते हैं
लेकिन खुलकर कह नहीं पाते।
हाँ, या शायद हिचकाते हैं, या फिर वो लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मान्यताओं को बिना सवाल किए मानते आए हैं। ये किताब उन्हें तर्कसंगत ढंग से सोचने और अपनी बात रखने के लिए क्या कहते हैं, बौद्धिक हथियार मुहैया कराती है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, किताब के कुछ खास अध्यायों और उनके मुख्य विचारों पर बात करते हैं। पूरी किताब तो नहीं हो पाएगी, पर कुछ अहम हिस्से देखते हैं। अध्याय 2 से शुरू करें, द गॉड हाइपोथेसिस।
हाँ, ईश्वर परिकल्पना। इस अध्याय में डॉकिंस बहुत साफ तौर पर इसे परिभाषित करते हैं। उनका मतलब है एक ऐसी अलौकिक सुपर ह्यूमन बुद्धि जिसने जानबूझकर इस ब्रह्मांड को बनाया है।
और वो जोर देकर कहते हैं कि ये एक वैज्ञानिक परिकल्पना है। ऐसा क्यों?
क्योंकि उनका तर्क है कि अगर ऐसा कोई ईश्वर है जो ब्रह्मांड में दखल देता है तो सिद्धांत रूप में उसके दखल के कुछ न कुछ पता लगने योग्य प्रभाव होने चाहिए, उसे टेस्ट किया जा सकना चाहिए।
हाँ, और यहीं पर वो अपनी वो मशहूर संभावना के स्पेक्ट्रम वाली बात करते हैं ना, 1 से 7 तक का स्केल।
बिल्कुल, 1 मतलब 100% यकीन कि ईश्वर है और 7 मतलब 100% यकीन कि ईश्वर नहीं है।
और मजे की बात यह है कि डॉकिंस खुद को 7 पर नहीं रखते।
हाँ, वो खुद को 6.9 पर रखते हैं, मतलब वो पूरी निश्चितता का दावा नहीं करते पर मानते हैं कि ईश्वर के होने की संभावना इतनी कम है कि उसे न के बराबर ही माना जा सकता है। इस नजरिए का महत्व क्या है फिर?
इसका महत्व ये है कि ये ईश्वर के सवाल को आस्था के निजी दायरे से निकालकर वैज्ञानिक जांच के दायरे में लाता है। ये कहता है कि भाई, अगर ईश्वर सचमुच है तो सबूत दिखाओ, सिर्फ विश्वास काफी नहीं है। ये आगे के तर्कों की नींव रखता है। फिर आता है अध्याय 3। इसमें डॉकिंस उन पारंपरिक दार्शनिक तर्कों से निपटते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिए जाते रहे हैं,
जैसे वो थॉमस एक्विनास वाले तर्क।
हाँ, उनके 5 रास्ते, जैसे अनमूव्ड मूवर, यानी हर हरकत का कोई पहला कारण होना चाहिए जो खुद बिना हिले हो, या फर्स्ट कॉज, हर चीज का कोई पहला कारण जो खुद बिना कारण के हो।
और वो सत्तामूलक तर्क भी, वो क्या था संक्षेप में? हाँ, सत्तामूलक तर्क, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये वो तर्क है जो ईश्वर की परिभाषा से ही उसका अस्तित्व साबित करने की कोशिश करता है। मतलब ईश्वर की परिभाषा ही ऐसी है जैसे सबसे उत्तम सत्ता, कि उसका अस्तित्व में होना जरूरी है वगैरह।
अच्छा,
डॉकिंस इन सभी तर्कों को, एक्विनास के हों, सत्तामूलक हों, या फिर दुनिया की सुंदरता या निजी अनुभव पर आधारित हों, एक एक करके खारिज करते हैं।
क्यों खारिज करते हैं? क्या कमी लगती है उन्हें इनमें?
उनका मुख्य इतराज ये है कि इन सब तर्कों में या तो कोई न कोई तार्किक चूक है, कोई फैलेसी है, या फिर वो ऐसी मान्यताओं पर टिके हैं जिनका कोई सबूत नहीं है। जैसे फर्स्ट कॉज पर वो पूछते हैं, अगर हर चीज का कारण चाहिए तो ईश्वर का कारण क्या है?
हाँ, ये सवाल तो उठता है।
अगर ईश्वर बिना कारण के हो सकता है तो ब्रह्मांड क्यों नहीं? वो दिखाते हैं कि ये सदियों पुराने तर्क, जो सुनने में बड़े भारी भरकम लगते हैं, असल में गहरी तार्किक जांच के सामने टिक नहीं पाते।
और यहीं से हम पहुंचते हैं अध्याय 4 पर, लगभग निश्चित रूप से ईश्वर क्यों नहीं है। ये शायद किताब का सबसे मजबूत तर्क है,
है ना? हाँ, ये केंद्रीय तर्क है। यहीं पर डॉकिंस अपना वो प्रसिद्ध तर्क पेश करते हैं, अल्टीमेट बोइंग 747 गैम्बिट।
हाँ, ये क्या है और ये इस पुराने डिजाइन के तर्क को कैसे पलट देता है?
देखिए, डिजाइन का तर्क बहुत लोकप्रिय रहा है। ये कहता है कि जैसे कोई जटिल घड़ी देखकर हम मान लेते हैं कि इसे किसी ने बनाया होगा।
हाँ, अपने आप तो नहीं बन सकते।
बिल्कुल, उसी तरह जीवन और ब्रह्मांड इतने जटिल हैं कि जरूर इनका कोई डिजाइनर यानी ईश्वर होना चाहिए। डॉकिंस इस तर्क को ही उलट देते हैं।
कैसे?
वो कहते हैं कि आप किसी जटिल चीज जैसे जीवन की व्याख्या करने के लिए उससे भी कहीं ज्यादा जटिल चीज जैसे एक सर्वशक्तिमान ईश्वर का सहारा नहीं ले सकते।
क्यों?
क्योंकि तब तुरंत सवाल उठेगा कि इतना जटिल ईश्वर कहां से आया, उसे किसने डिजाइन किया। ये तो समस्या को हल करने की बजाय और बड़ा बना देता है।
अच्छा,
उनका वो बोइंग 747 वाला उदाहरण यही कहता है। ये सोचना कि एक पूरा बोइंग 747 विमान कबाड़ के ढेर से तूफान में अपने आप बन गया, ये बेतुका लगता है।
हाँ, बिल्कुल बेतुका।
लेकिन डॉकिंस कहते हैं कि ईश्वर जैसी अति जटिल सत्ता का बिना किसी व्याख्या के बस यूं ही अस्तित्व में होना उस बोइंग 747 के अपने आप बन जाने से भी कहीं ज्यादा असंभाव्य, मतलब इम्प्रोबेबल है।
तो अगर ईश्वर जटिलता की व्याख्या नहीं है तो समाधान क्या है फिर? डॉकिंस क्या विकल्प देते हैं?
वो प्राकृतिक चयन द्वारा विकास, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, को समाधान बताते हैं, वो इसे क्रेन की तरह देखते हैं।
क्रेन, वो कैसे?
जैसे क्रेन धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से भारी चीजें उठाती है, वैसे ही विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत सरल शुरुआत से अरबों सालों में बिना किसी डिजाइनर की जरूरत के धीरे धीरे कदम दर कदम जीवन की अद्भुत जटिलता बना सकती है।
तो ये ईश्वर की परिकल्पना को अनावश्यक बना देता है।
हाँ बिल्कुल, ये जीवन की जटिलता की एक शक्तिशाली प्राकृतिक और सबूतों पर आधारित व्याख्या है। फिर अध्याय 6 में डॉकिंस एक बहुत आम धारणा को चुनौती देते हैं कि ईश्वर के बिना नैतिकता संभव नहीं।
हाँ, ये तो बहुत सुना जाता है कि अगर भगवान नहीं तो फिर सही गलत क्या, सब कुछ जायज हो जाएगा।
बिल्कुल, डॉकिंस इस दावे का खंडन करते हैं। वो नैतिकता की जड़ें धर्म में नहीं बल्कि डार्विनियन विकासवाद में ढूंढते हैं।
अच्छा, वो कैसे?
उनका तर्क है कि परोपकारिता, सहयोग, सहानुभूति जैसी नैतिक भावनाएं हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से विकसित हुई हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने और समूह में फलने फूलने में मदद मिली। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे किन सिलेक्शन, रिश्तेदारों की मदद करना क्योंकि वो जीन साझा करते हैं, या पारस्परिक परोपकारिता, मतलब तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी करूंगा, या फिर एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के फायदे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो नैतिक समझ है, सही गलत की भावना, वो धर्म के आने से बहुत पहले ही विकसित होने लगी थी।
हाँ हाँ, काफी हद तक हम इंसानों में स्वाभाविक रूप से सहानुभूति, तर्क और सहयोग की क्षमता है।
तो फिर एक धर्मनिरपेक्ष नैतिकता, मतलब सेक्युलर मोरालिटी।
हाँ, जो तर्क, मानवीय कल्याण और सहानुभूति पर आधारित हो, वो ना सिर्फ संभव है बल्कि शायद कई बार धार्मिक आदेशों पर आधारित नैतिकता से ज्यादा मानवीय भी हो सकती है, क्योंकि वो बदलती जरूरतों के हिसाब से विकसित हो सकती है।
आगे बढ़ते हैं अध्याय 9 पर, बचपन, दुर्व्यवहार और धर्म से पलायन। इस अध्याय में डॉकिंस का लहजा काफी तीव्र लगता है, भावनात्मक।
हाँ,
भी
हाँ ये है।
वे बच्चों को उनके माता पिता के धर्म की घुट्टी पिलाने को मानसिक दुर्व्यवहार जैसा क्यों कह देते हैं? ये तो काफी सख्त शब्द है।
हाँ, शब्द सख्त हैं। उनका तर्क ये है कि बच्चों का दिमाग स्वाभाविक रूप से बड़ों की बातें बिना सवाल मान लेता है। उन्हें छोटी उम्र में ये सिखाना कि किसी खास धार्मिक विश्वास को बिना सबूत मानना एक गुण है, वो उनकी आलोचनात्मक सोच को विकसित होने से रोकता है।
और वो ईसाई बच्चा या मुस्लिम बच्चा जैसे लेबल पर भी आपत्ति करते हैं।
बिल्कुल, उनकी आपत्ति ये है कि बच्चे धर्म जैसे जटिल विषय पर अपना स्वतंत्र मत बनाने के लिए परिपक्व नहीं होते। उन्हें ईसाई बच्चा कहना उतना ही अतार्किक है जितना उन्हें मार्क्सवादी बच्चा कहना। ये विचार वयस्कों के होते हैं।
तो ये बच्चों की बौद्धिक स्वतंत्रता का सवाल है।
हाँ बिल्कुल, डॉकिंस जोर देते हैं कि बच्चों को कैसे सोचना है, तर्क करना, सवाल पूछना, सबूत देखना, ये सिखाना चाहिए, न कि क्या सोचना है, यानी तैयारशुदा जवाब थमा देना।
उन्हें अपना मन मनाने का मौका मिलना चाहिए जब वो बड़े हो जाए।
हाँ, जब वो बौद्धिक रूप से तैयार हों। तो अगर हम इस पूरी किताब के मुख्य संदेशों को समेटें तो क्या बातें निकल कर आती हैं? पहला तो शायद यही कि ईश्वर परिकल्पना एक वैज्ञानिक दावा है।
हाँ, इसे आस्था के नाम पर जांच से परे नहीं रखा जा सकता, सबूतों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए।
और डॉकिंस के अनुसार ये परिकल्पना उस कसौटी पर खरी नहीं उतरती। दूसरा बड़ा संदेश,
दूसरा, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास। ये जीवन की जटिलता की इतनी शक्तिशाली व्याख्या है कि डिजाइनर की जरूरत ही खत्म हो जाती है।
बिल्कुल। तीसरा अहम विषय है आस्था के बारे में उनका नजरिया।
हाँ, कि आस्था यानी बिना सबूत के विश्वास करना कोई गुण नहीं बल्कि एक बौद्धिक अवगुण है।
हाँ, वो मानते हैं कि ये आलोचनात्मक सोच को दबाता है। अब जाहिर है, भारत जैसे देश में जहां आस्था जीवन का अहम हिस्सा है, ये विचार काफी
उत्तेजक है।
हाँ, बहस का मुद्दा है। चौथा,
नैतिकता की जड़ें धर्म में नहीं बल्कि हमारे जैविक विकास, सहानुभूति और तर्क में है।
हम अपने आसपास देखते भी हैं कि बहुत से लोग जो धार्मिक नहीं हैं, वो भी नैतिक जीवन जीते हैं।
सही कहा। और पांचवा मुख्य संदेश बच्चों की परवरिश से जुड़ा है,
कि बचपन में ही उन्हें किसी खास धर्म के सांचे में ढालना, जिसे वो ब्रेन वॉशिंग जैसा कहते हैं, वो हानिकारक हो सकता है। उन्हें सोचने की आजादी मिलनी चाहिए। भारत में जहां बच्चों की परवरिश में धर्म की बड़ी भूमिका है, ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है।
इस किताब में कई पंक्तियां काफी यादगार हैं। कुछ प्रमुख विचारों पर बात करें, जैसे वो पुराने नियम के ईश्वर के बारे में लिखते हैं सार रूप में कि वो शायद साहित्य का सबसे अप्रिय चरित्र है।
हाँ, ये काफी कठोर आलोचना है। इसका निशाना सीधे उन पवित्र ग्रंथों पर है जिन्हें नैतिकता का स्रोत माना जाता है। डॉकिंस पाठक को उन ग्रंथों में ईश्वर के कामों को आज के नैतिक पैमानों पर देखने को उकसाते हैं।
और एक और विचार आस्था के बारे में कि आस्था सबसे बड़ा बहाना है सोचने और सबूतों का मूल्यांकन करने की जरूरत से बचने का तरीका। ये उनकी आस्था की आलोचना को कैसे दिखाता है?
ये दिखाता है कि वो आस्था को एक तरह से बौद्धिक जिम्मेदारी से भागना मानते हैं। जब कोई कहता है मैं आस्था रखता हूं, तो वो कह रहा है मुझे सबूत या तर्क की जरूरत नहीं।
और वो अल्टीमेट बोइंग 747 गैम्बिट का निचोड़ कि एक डिजाइनर ईश्वर का इस्तेमाल जटिलता को समझाने के लिए नहीं किया जा सकता,
क्योंकि तब सवाल उठेगा कि वो ईश्वर खुद कहां से आया, जो और भी जटिल होगा। ये डिजाइन वाले तर्क की जड़ पर चोट करता है। ये दिखाता है कि ईश्वर को मानना समस्या का हल नहीं बल्कि एक बड़ी पहेली खड़ी करता है।
और आखिर में बच्चों के बारे में वो विचार, कोई ईसाई बच्चा नहीं होता, सिर्फ ईसाई माता पिता का बच्चा होता है।
हाँ, ये जोर देता है कि धार्मिक विश्वास एक व्यक्तिगत चुनाव होना चाहिए, जन्म से मिली पहचान नहीं। ये बच्चों के अपनी सोच विकसित करने के अधिकार का समर्थन करता है। तो ये सब विचार तो काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। सवाल है कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें।
हाँ, ये अहम है। शायद सबसे पहली चीज है आलोचनात्मक सोच का अभ्यास करना।
बिल्कुल, किसी भी दावे को यूं ही ना मान लेना, चाहे वो धर्म का हो, राजनीति का या विज्ञापन का। सवाल पूछना, सबूत क्या है, क्या ये तर्कसंगत है।
दूसरी बात, अपनी नैतिकता के स्रोतों पर सोचना। क्या हमारी नैतिकता सिर्फ धर्म से आती है या सहानुभूति, तर्क और परिणामों की समझ पर आधारित है?
हाँ, ये हमें जटिल सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा मानवीय नजरिया अपनाने में मदद कर सकता है। तीसरा, बच्चों की परवरिश में।
उनमें जिज्ञासा जगाना, सवाल पूछने की हिम्मत देना, उन्हें अलग अलग नजरियों से दुनिया को देखने के लिए प्रोत्साहित करना।
और चौथा, ये किताब उन लोगों को भी सहारा दे सकती है जो शायद नास्तिक या अज्ञेयवादी हैं पर खुलकर कह नहीं पाते।
हाँ, ये उन्हें अपने विचारों को समझने और व्यक्त करने के लिए बौद्धिक आत्मविश्वास देती है।
और पांचवां, शायद सबसे खूबसूरत बात, डॉकिंस कहते हैं कि हमें आश्चर्य के लिए अलौकिक चमत्कारों की जरूरत नहीं है,
विज्ञान ही काफी है।
हाँ, विज्ञान हमें ब्रह्मांड की विशालता, जीवन के विकास की कहानी, प्रकृति के नियमों की सुंदरता दिखाता है, जो किसी भी पौराणिक कथा से ज्यादा विस्मयकारी है। हम विज्ञान, कला, मानवीय रिश्तों में गहरा अर्थ पा सकते हैं।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि जीवन के सबसे गहरे सवालों का सामना भी तर्क और सबूतों की रोशनी में किया जा सकता है। ये किताब धार्मिक आस्था पर सवाल उठाने और एक तर्कसंगत नजरिया अपनाने के लिए एक मजबूत आधार देती है।
और मेरे लिए शायद सबसे अहम बात यह है कि डॉकिंस नास्तिकता को सिर्फ धर्म की नामंजूरी के तौर पर नहीं बल्कि एक सकारात्मक, बौद्धिक रूप से संतुष्टि करने वाली और नैतिक विश्व दृष्टि के रूप में पेश करते हैं। इसकी जड़ें विज्ञान और मानवतावाद में हैं। ये किताब सोचने पर मजबूर करती है कि ईश्वर के बिना जीवन न सिर्फ संभव है बल्कि शायद ज्यादा ईमानदार और असली आश्चर्य से भरा हो सकता है।
तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। अगर नैतिकता और जीवन के अर्थ का स्रोत सिर्फ हम इंसान और ये प्राकृतिक दुनिया ही है, तो फिर हमारी एक दूसरे के प्रति और इस ग्रह के प्रति क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? क्या ब्रह्मांड को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने से जो विस्मय पैदा होता है वो पारंपरिक धार्मिक श्रद्धा से ज्यादा गहरा हो सकता है? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्सेंटा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।